का था, रूह वही रूप नया।
सुप्रिया और सिंहासन बद्दी सी। सुप्रिया और सिंहासन बद्दी सी में अभी तक आपने सुना कि कैसे हंसती खेलती सुप्रिया घर में डकैती के बाद सहम थी सी गई थी। उसका मन हल्का करने और वातावरण बदलने के लिए दादू दादी और सुप्रिया गांव के घर में आ गए। गांव के घर के बाहर एक नीम का पेड़ है जिस पर काबुलीवाला आकर बच्चों को कहानियां सुनाता है। पिछले कहानी में काबुलीवाला ने बताया कि राजा भोज को कैसे एक बहुमूल्य सिंहासन मिला। इतना अमूल्य सिंहासन पाने के बाद राजा भोज ने तुरंत उसे अपने महल में पहुंचाया और उस पर बैठने की तैयारी करने लगा। शुभ मुहूर्त के दिन जैसे ही राजा भोज ने अपना कदम सिंहासन की ओर बढ़ाया, सिंहासन की एक पुतली रत्न मंजरी सजीव हो गई और उसने राजा से कुछ सवाल पूछे। काबुलीवाला की कहानी सुनने के बाद सुप्रिया को एक चीज का विश्वास हो रहा था कि बुराई की कभी जीत नहीं होती। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। आज सुप्रिया की मॉर्निंग कुछ जल्दी हो गई थी, लेकिन अपना सैड लंबा सा चेहरा ले वह आंगन में झूले पर पैर लटका कर बैठी थी। ना हंस रही थी, ना किसी से कुछ बोल रही थी। तभी पीछे से दादी आई और उन्होंने बोला, अरे सुप्रिया, आज जाना नहीं है क्या तुम्हें अपने काबुलीवाला से कहानी सुनने? तुम भूल गई क्या बेटा, उसके आने का समय हो रहा है। सुप्रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। दादी, जाना तो है, और यह भी तो देखना है कि रत्न मंजरी ने राजा भोज को सिंहासन पर क्यों नहीं बैठने दिया? मुरझाई सी आवाज में सुप्रिया ने दादी से बोला, जल्दी से बताओ मेरी बेटी आज क्या नाश्ता खाएगी। मैं अभी गई और झटपट अपनी रानी के लिए बना कर लाई। आज ब्रेकफास्ट करने के बाद ही कहानी सुनने जाना। दादी के मन में सुप्रिया को खिलाने का यह नया आइडिया आया। वह आखिर करती भी तो क्या, इतने दिनों से सुप्रिया ने अच्छे से मन भर के कुछ खाया भी तो नहीं था। ब्रेकफास्ट बनाते समय दादी के मन में एक विचार आया कि वह सुप्रिया से पूछे कि एक छोटी सी बच्ची डकैती से इतनी परेशान क्यों हो गई। उन्होंने मन की बात मन में ही रख के सोचा, क्यों सुप्रिया के जख्मों को हरा करा जाए। बस सुप्रिया ने लास्ट बाइट खाया ही था, तभी उसके कानों में डमरू की आवाज आई। अपने हाथ से पानी पीकर और ब्रेकफास्ट की प्लेट आगे सरकाती हुई सुप्रिया बाहर की ओर भागी। काबुलीवाला जोर जोर से डमरू बजाकर बच्चों को बुला रहा था। अरे मीनू, पिंकी, रिचा, रुचि, रवि, सार्थक, बंटी, बबली, आओ 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 आओ, सुनाता हूं तुमको कहानी। रत्न मंजरी, मैं राजा भोज को सिंहासन पर आज नहीं बैठने दूंगी। आओ 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 आओ, सुनाता हूं तुमको कहानी, इसमें अनेक राजा और अनेक रानी। सारे बच्चे काबुलीवाला को चारों तरफ घेर कर बैठ गए। बच्चों, तुम्हें याद है, जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम बढ़ाया तो सिंहासन की एक पुतली रत्न मंजरी सजीव हो गई और जोर से हंसने लगी। रत्नमंजरी ने बोला, राजन यह सत्य है कि तुम पराक्रमी, धर्म अधीन एवं दानवीर हो, लेकिन तुम जिस सिंहासन पर बैठने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो, क्या तुम उसके योग्य हो? शायद तुम इस तथ्य से अनजान हो कि यह सिंहासन किस महापुरुष का है। रत्नमंजरी की बात सुन राजा भोज भड़क उठे और बोले, अपने जीवन में मुझे इस प्रकार की बातें सुनने की आदत नहीं है। यदि तुमने दोबारा मेरा अपमान किया तो मेरे सैनिक तुम्हें और तुम्हारे इस सिंहासन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पुतली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस राजन, इतनी जरा सी बात पर इतने क्रोधित हो उठे? हमें तोड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? हमारी मृत्यु तो राजा विक्रमादित्य के साथ ही हो गई थी। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही राजा भोज चौंक पड़े। विक्रमादित्य? महान पराक्रमी महाराजा विक्रमादित्य? हाँ, आपने एकदम सही सुना राजन, यह सिंहासन विक्रमादित्य का है, रत्नमंजरी ने राजा भोज को बताया। वह बोली, मुझसे राजा विक्रमादित्य के दान, वीरता और त्याग की यह कहानी सुनकर पहले यह निर्णय करो कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो या नहीं, तभी इस सिंहासन पर बैठना। अब ध्यान पूर्वक मेरी कहानी सुनो। और रत्नमंजरी ने कहानी सुनानी आरंभ कर दी। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक ब्राह्मण उनके पास पहुंचा और उसने राजा से बोला, महाराज की जय हो, कृपया आशीर्वाद दीजिए ब्रह्मदेव। राजा ने कहा, चिरायु रहो, मैं ब्राह्मण हूं, परंतु कोई लालसा लेकर आपके दरबार में नहीं आया हूं, मैं कैलाश पर्वत से आ रहा हूं। मानसरोवर में मैंने एक विचित्र चीज देखी जिसकी सूचना मैं आपको देने आया हूं। मैं मानसरोवर में सूर्यास्त के बाद पूजा कर रहा था, तभी मेरे कानों में एक सुंदर गाने और घुंघरुओं की आवाज पड़ी। यह आवाज इतनी सुंदर थी कि मैं उसके पीछे खिंचा चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि 8 सुंदर लड़कियां, जिनकी चमक सूर्य के जैसी थी, वह पानी पर नाच रही थी। उनमें से एक बांसुरी बजा रही थी, एक तबला, तीसरी सितार बजा रही थी, चौथी गाना गा रही थी और बाकी सब उनकी धुन पर नृत्य कर रही थी। उनका गाना राजन इतना मधुर और नृत्य इतना मनभावन था कि मैं एक ब्राह्मण होने के बाद भी पूरी रात बिना पलक झपकाए बैठा रहा और देखता रहा। जब सूर्य उदय होने लगा तो वह 8 कन्याएं जाने लगी। जाने के पहले उन्होंने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और मुझे अपने पीछे आने का आमंत्रण दिया। मैं उनके पीछे गया। एक जगह जाकर नदी का पानी समुद्र में मिलता है, वहां पर सारी कन्याएं आग के लपटों पर चली और पानी में एक एक करके कूद गई। वह आवाज देकर मुझे बुला रही थी, पर मेरी हिम्मत ही ना हुई उस आग में कूदने की। मैं अपने रास्ते चला और आगे बढ़कर कुछ दिनों बाद अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने जब अपने पत्नी को यह बात सुनाई तो वह बोली कि पानी के नीचे वाली कन्याओं के पीछे जरूर कोई रहस्य है, मुझे राजा विक्रमादित्य के पास जाकर यह बात बतानी चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं इच्छुक हूँ जानने का कि वह लड़कियाँ आगे पानी में जाकर कहाँ चली गईं? पानी के नीचे कुछ है क्या? विक्रमादित्य यह बात सुनकर काफ़ कुछ सब कुछ जानने का निर्णय कर बैठे। अपना राज्य मंत्रियों के सपूत छोड़कर गौतमी नदी के किनारे मानसरोवर के पास पहुंचे। वह आधी रात तक नदी के किनारे बैठे इंतजार करते रहे। तभी उनकी नजर उन आठों सुंदर लड़कियों पर पड़ी जिनके बारे में ब्राह्मण ने उन्हें बताया था। ठीक उसी तरह जब सुबह हुई वह लड़कियां जाने लगी। उन्होंने विक्रमादित्य की तरफ देखकर मुस्कुराया और उन्हें अपने पीछे आने का निमंत्रण दिया। उनके पीछे चलते चलते विक्रमादित्य उस स्थान पर पहुंच गए जहां पानी पर आग लगी थी। आग में उतरने के पहले लड़कियों ने विक्रमादित्य को अपने पीछे आने का आग्रह किया। राजा भी निष्खौफ होकर आग पे चल के पानी में कूद गया। पानी के नीचे एक बहुत ही सुंदर नगर था जिसमें सोने के दरवाजे और चमचमाती इमारतें थीं। वह लड़कियां सोने और जवाहरातों के महलों में रहती थीं। उन्होंने राजा विक्रमादित्य का बहुत आदर सत्कार किया और उसे तख्त पर बिठाया। लड़कियों ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि वह जलपरियां हैं और उनके पास आठ जादुई शक्तियां हैं। राजा विक्रमादित्य ने उन शक्तियों के बारे में जानने की इच्छा जाहिर करी। तो पहली जलपरी बोली, महाराज मेरा नाम अनिमा है। मेरे पास शक्ति है कि मैं जितनी चाहूं उतनी छोटी बन सकती हूं, एक धूल के कण से भी ज्यादा छोटी। दूसरी लड़की ने बोला, मेरा नाम महिमा है। मैं बहुत विशाल बन सकती हूं, इतनी विशाल कि जैसे आसमान। विक्रमादित्य ने तीसरी लड़की की तरफ देखा तो उसने अपना नाम बताते हुए राजा को बोला, मेरे पास हल्का होने की शक्ति है। मैं इतनी हल्की हो सकती हूं कि मैं आसमान पे तैर सकती हूं। मैं एक बादल से भी हल्की हो सकती हूं। चौथी लड़की बोली, महाराज मेरा नाम गरिमा है। मुझ में बहुत भारी होने की शक्ति है। मैं एक चट्टान, पहाड़ या पूरी पृथ्वी से भी भारी हो सकती हूं। पांचवी जलपरी बोली, मेरा नाम प्रतिमा है। मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिसे आप जो कुछ चाहें वह इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरी शक्ति होगी तो आपको सब कुछ मिल सकता है। जिस पर छठी कन्या बोली, मेरा नाम पराक्रमा है। आप जो चाहें वह शक्ति मुझसे ले सकते हैं। सातवीं जलपरी ने अपना नाम बताया और अपनी शक्ति के बारे में राजा को वर्णन करते हुए बोली, मेरी शक्ति से आपने जो कुछ भी गलत कार्य किया हो उसे दोबारा करके सही कर सकते हैं। आठवीं जलपरी की तरफ राजा ने जैसे ही देखा उसने बोला, मेरा नाम वसिता है। मेरी शक्ति आपको पूरी पृथ्वी को अपने वश में, अपने हाथों में करने की शक्ति देती है। मेरी शक्ति से इंसान, राक्षस और भगवान आप सबके मालिक बन सकते हैं। जब सब लड़कियों ने अपनी शक्तियां राजा को बता दी वह शांत हो गई। उन लोगों ने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से विनती करी, हे राजन, आप ही वह राजा हैं जो हमारे राज्य पर शासन कर सकते हैं। हम इतने वर्षों से आप ही का इंतजार कर रही थी। हम अपनी शक्तियां आपको दे देंगी और आप कृपया करके हमारे राज्य पर शासन। यह पूरी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। राजा मन ही मन सोचने लगा कि यह जल परियां इतनी अच्छी हैं, यह राज्य कितना सुंदर और यह शक्तियां कितनी भी बलशाली, पर मैं कैसे कैसे अपना राज्य छोड़कर किसी और राज्य पर शासन कर सकता हूं। उन्होंने जलपरियों की तरफ देखा और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप मुझे अपनी शक्तियां बताई और मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करने का मौका दिया, पर मैं माफी चाहता हूं कि मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा राज्य, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। वह मेरे बच्चों के समान हैं। उनका क्या होगा अगर मैं वापस नहीं गया तो? सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ भारी नजरों से देखा। तब उनमें से सबसे बड़ी लड़की बोली, महाराज, विक्रमादित्य का नाम ऐसे ही नहीं सुना था। आप वैसे ही हैं जैसा हमने आपके बारे में सुना था। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? फिर भी हम बहनें अपनी सारी शक्तियां आपको प्रदान करती हैं। हमें पूरा विश्वास है आप इनका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। राजा विक्रमादित्य ने पुतलियों का धन्यवाद किया और उनकी आठों शक्तियां लेकर वहां से निकल पड़े। जब वह अपने राज्य वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में सड़क पर एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ मिला। विक्रमादित्य वहां रुके और उन्होंने उस आदमी से उसके रोने का कारण पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, मैं बहुत गरीब और बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी मदद के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। मेरी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं रहा। मेरे हाथ और पैरों में अब शक्ति भी नहीं। मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं क्या खाऊं? मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पास से आठों शक्तियां जो उसे जलपरियों ने दी थी वह निकाल कर उस गरीब बूढ़े को दे दी। नहीं राजन, मैं इन शक्तियों का क्या करूंगा? हाथ जोड़कर बूढ़े आदमी ने बोला। राजा ने समझाते हुए बूढ़े आदमी को बोला कि शक्तियां उसके काम आएंगी और वह आज के बाद कभी भी अपने आप को लाचार महसूस नहीं करेगा। अपनी शक्तियां निकालकर उस गरीब आदमी को देने में दानवीर राजा विक्रमादित्य ने एक क्षण भी नहीं सोचा। वह निर्विकार भाव से इस तरह अपनी राजधानी में प्रवेश कर गए जैसे उन्होंने कुछ दान ही नहीं दिया हो। यह कहानी सुनाकर रत्नमंजरी ने राजा से पूछा, क्या आप कभी ऐसा कोई कार्य करते हैं राजन? क्या आपने कोई ऐसा दान दिया है जैसा विक्रमादित्य ने दिया था? यदि ऐसा किया है तो ही इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा पहले राजा विक्रमादित्य की तरह बनो, फिर इंद्र के इस सिंहासन पर बैठने का विचार अपने मन में लाना। राजा भोज का पुतली के पास से यह कहानी सुनते सुनते सिंहासन पर बैठने का मुहूर्त निकल गया। भोज निराश होकर उस दिन अपने शयन कक्ष में लौट गए। दूसरे दिन सुबह काफी जल्दी उठकर राजा भोज को देवताओं के सिंहासन पर विराजमान होने का लोभ फिर से सताने लगा। वह राजसी पोशाक धारण कर सिंहासन के पास पहुंचे। पिछले दिन की तरह आज भी उन्होंने सिंहासन की सीढ़ी पर कदम रखने के लिए अपना पैर बढ़ाया तो एक पुतली निकलकर उनके सामने आ गई और उसने उनका रास्ता रोक लिया। कहानी खत्म होते साथ ही काबुली वाले ने अपना डमरू बजाया, थैली में हाथ डाला, बच्चों को किशमिश खिलाई और वहां से चला गया। सभी बच्चे चिल्ला चिल्ला कर पूछते रहे, अरे 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 काबुली वाला, क्या राजा भोज कल सिंहासन पर बैठेगा? कुछ पूछ रहे थे, क्या दूसरी कोई कठपुतली आकर कल राजा को नई कहानी सुनाने वाली है? कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे, काबुली वाला खत्म मत करो ना, प्लीज फिर से डमरू बजाओ, लाओ मैं बजाती हूं, आगे की कहानी सुनाओ, प्लीज सुनाओ ना। बच्चों के देखते ही देखते काबुली वाले ने अपना सामान बटोरा और वहां से चला गया। बच्चे भी एक एक करके अपने घर चले गए। एक सुप्रिया ही थी जिसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली थी। वह शांति से बैठी रही और काबुली वाला के जाने पर उठकर अपने घर चली आई। जैसे ही सुप्रिया घर पहुंची, रामू काका ने सुप्रिया से पूछा, अरे बिटिया सुन आई आज की कहानी? आज क्या बोला तुम्हारा काबुली वाला? उसने कौन सी कहानी सुनाई? तनिक हमें भी तो सुनाओ ना।
हाँ काका, कहानी तो सुनाई, क्या मैं वो आपको कल सुनाऊं?
उदास आवाज में सुप्रिया ने रामू काका से बोला। उसके बाद तुरंत उसने रामू काका से पूछा, काका क्या काबुली वाला सच कहता है? क्या हर इंसान लालची नहीं होता? क्या ऐसा भी कोई है जो अपने को मिली वैल्यूबल चीजें किसी भी अनजान को दे दे? ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना। अच्छा ओके, अपने आप की बड़बड़ाती बड़बड़ाती सुप्रिया अपने कमरे के अंदर चली गई। रामू काका को सुप्रिया के सवाल कुछ अधिक समझ नहीं आ रहे थे तो वह भी मुस्कुराते हुए किचन में अपना काम करने चले गए। धन्यवाद।